ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद्भागवतम कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 23, देवताओं को स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति, श्लोक संख्या 3 से 6। 3, 4, 5 का तात्पर्य नहीं है तो उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहकर बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश या वरुणपाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्ण संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके भगवान ब्रह्मांड पर शासन करने लगे। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक हर्षित भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। तो आज का जो श्लोक है ये प्रहलाद महाराज द्वारा बोला गया है और ये जो पूरी लीला है 6, 7, 8 अध्याय से चल रही है, इसका लगभग समापन होने वाला है। लीला का आखिरी अध्याय है, बहुत कम तात्पर्य है और ये अध्याय छोटा भी है और ये समाप्त होने वाली लीला। तो प्रहलाद महाराज जो कि बलि महाराज के पिता दादा हैं उनके, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो पूरी लीला देख रहे किस प्रकार से बलि महाराज को भगवान ने दान मांगा, बंदी बनाया और उसके बाद में उन पे जो कृपा की अपना चरण कमल रखा और फाइनली उनका गुणगान किया और अब उनको मुक्त किया और सुतल लोक का वास दिया। तो ये श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच, नेमं विरिंचो लभते प्रसादम। तो जिन लोगों का भागवतम बुक होगा, ये दूसरी लाइन के अंदर एक न एक्स्ट्रा है तो हमने बोर्ड पे हटा दिया है। आई डोंट नो व्हाट इट्स न श्रीर न इट्स वन न, है ना। लेकिन जो बुक भागवत जिनके पास है उसमें एक न दोनों में, जो संस्कृत वाले में मिस प्रिंट है, इंग्लिश में नहीं है, वेदाबेस में नहीं है, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्वः किमुतापरेण्ये यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरभिवन्दिताङ्घ्रिः। श्री प्रह्लाद उवाच, नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादम् न श्रीर्न शर्वः किमुतापरेण्ये यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरभिवन्दिताङ्घ्रिः। श्री प्रह्लाद उवाच, नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादम् न श्रीर्न शर्वः किमुतापरेण्ये यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरभिवन्दिताङ्घ्रिः। विश्वाभिवन्द्यैरभिवन्दिताङ्घ्रिः शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य है जीवन अंग्रेज अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद महाराज ने कहा, न नहीं, इमं यह विरिंचः ब्रह्मा जी भी लभते प्राप्त कर सकता है प्रसादम आशीर्वाद, न नहीं सॉरी न न तो श्री ही लक्ष्मी जी, न न तो शर्वः शिव जी, किम उत क्या कहा जाए अपरे अन्य अन्य यत जो आशीर्वाद न हम असुराणाम असुरों का असि हो दुर्गपाल पालक विश्वाभिवंद्य ही समस्त ब्रह्मांड में पूजित ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों के द्वारा अभिवंदितांग्री जिनके चरण कमल पूज्य हैं। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा हे भगवान आप विश्व पूज्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी शिव जी या लक्ष्मी जी को भी ऐसी कभी दया प्राप्त नहीं हुई तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। तात्पर्य, दुर्गपाल शब्द महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। क्योंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसीलिए उन्हें यहाँ दुर्गपाल कहा गया है, अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्ट प्रद दशाओं में संरक्षण देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग समाप्ति की ओर है और प्रहलाद महाराज आज का श्लोक बोल रहे हैं और आने वाले भी 2-3 श्लोक प्रहलाद महाराज बोलेंगे और उसके बाद भगवान प्रहलाद महाराज को बोलेंगे कि अपने पौत्र बलि महाराज के साथ जाकर के आप स्वतंत्र लोक में रहिए। और फिर प्रहलाद महाराज प्रस्थान करते हैं और उसके बाद भगवान शुक्राचार्य से संवाद करते हैं। तो ये प्रसंग है। तो भगवान का अरेंजमेंट, खासकर जो थोड़े नए होंगे मैं ज़्यादा रिकैप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पुराने भक्तों के लिए कुछ अच्छा इसमें जो मैं बोलने का प्रयास करूँगा तो उसमें कुछ लीलाएँ हैं। और वैसे तो जो सर्वज्ञ दामोदर पर उन्हें मुझे श्लोक पर बोलने को बोला और सुबह उन्होंने ही मुझे मैटर प्रदान किया सारा का सारा। तो कई सारे वामन देव के रेफरेंसेज हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स के अंदर और बलि महाराज के रेफरेंसेज हैं, तो वो अभी तक शायद किन्हीं वक्ता ने ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं किया तो वो मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस लीला में हम देखेंगे कि भगवान के जब भक्त शरण ग्रहण लेते हैं तो जितने भी विवाद हों, जितने भी विरोधास्पद लीलाएँ घटनाएँ हों, उन सब में समन्वय बैठ सकता है। एकमात्र दुनिया में एक ही तरीका है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का लगा लीजिए या विवाद सॉल्व करने का, सही प्रकार से सॉल्व करने का, वो है कि दोनों पार्टियां भगवान की शरण ग्रहण कर लें, है ना, तभी दुनिया विवाद जो है सॉल्व हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। और जहाँ जहाँ भगवान कुछ भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो उसके पीछे भगवान की महान योजना होती है। कल हम एक लीला के ऊपर चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचार्य क्लास के अंदर, पृथु महाराज का कैसे वो धरती माता के पीछे अस्त्र लेकर के जाते हैं, तो बड़ी अजीब सी लीला लगती है कि ऐसे कैसे गाय के रूप में और एक स्त्री के ऊपर वो पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। लेकिन उसके अंत में बताया जाता है कि भगवान की जो लीला है उसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है और सामान्य जन उसे नहीं समझ सकते। तो इस लीला में अभी तक लग रहा होगा कि बलि महाराज का बड़ा अन्याय हुआ है, शुक्राचार्य के साथ अन्याय हुआ है, इंद्र को ज़्यादा फेवर किया गया है या कुछ भी लग सकता है ऐसे, लेकिन इस लीला के जैसे समापन होगा तो हम देखेंगे सभी पार्टियां बहुत सुखी होकर जाती हैं। शुक्राचार्य भगवान की वंदना करने के बाद में प्रसन्न हो जाते हैं वो भी, और बलि महाराज बहुत प्रसन्न है, प्रहलाद महाराज प्रसन्न है, सभी देवतागण भी प्रसन्न हैं और जो है और सभी क्या करते हैं, सब कोई भगवान वामन देव और भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं कि भगवान कितने महान हैं, कि भगवान की महानता गुणगान करते हैं। और इस श्लोक के अंत, इस अध्याय के, इसी पूरी लीला के अंत के अंदर और इस अध्याय के अंत में भी यही निष्कर्ष है कि हर किसी को भगवान की निपुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और विशेषकर इस लीला का श्रुतिफल बताया जाएगा, बताया है कि कोई भी सामाजिक जो फेस्ट उत्सव होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, जैसे विवाह संस्कार या श्राद्ध संस्कार और एक और संस्कार बताया वहाँ पे, जहाँ पे बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में धन व्यय होता है, खर्चा होता है, वहाँ पे यदि वामन देव की लीलाओं की चर्चा की जाएगी, पढ़ा जाएगा, तो सभी इनऑस्पिशियस अशुभ जो कुछ घटना होने के चांस है वो समाप्त हो जाएंगे। कोई भी अशुभ घटना हो वो समाप्त हो जाएगी। तो बताया कि ऐसी लीला को इन शुभ कार्यों के दौरान या ऐसे कार्यों के दौरान पढ़ना चाहिए। तो ये एक श्रुति फल है, उसके अलावा भी और श्रुति फल दिए गए हैं वहाँ पे। तो भगवान प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं भगवान को कि नैमम विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्व किमुता परेण्य। विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी, और श्री मतलब लक्ष्मी देवी, और शर्व जो है अर्थात शिव जी। तो लभते प्रसादम, प्रसादम अर्थात कृपा, लभते अर्थात प्राप्त कर सकता है। तो बोले ऐसी कृपा तो विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी को, न श्री अर्थात लक्ष्मी जी को, और न शर्व अर्थात शिव जी को प्राप्त हुई है। तो अन्य किसी की तो बात ही क्या है, किमुता परेण्य, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। और आश्चर्य की बात यह है, कैसी कृपा, कृपा शांत कर सकते हैं बच्चों को, हरे कृष्ण। तो कैसी कृपा और किसको प्राप्त हुई है, ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त हो सकती, शिव जी को नहीं हो सकती, लक्ष्मी को नहीं हुई है, तो किसको हुई है। यन्नह असुराणाम असी, कि नह मतलब हम और असुराणाम कि हम सब असुरों को प्राप्त हुई है। तो खुद प्रहलाद महाराज असुर कुल में ही उत्पन्न हुए हैं, और जो है उनके पौत्र बलि महाराज भी असुर राज हैं। तो यन्नो सुराणाम असी, क्या क्या कृपा प्राप्त हो गई कि भगवान क्या बन गए, दुर्गपाल। तो यही शब्द प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य दिया, खाली दुर्गपाल शब्द के ऊपर दिया है, 6 लाइन का तात्पर्य है कि भगवान जो है दुर्गपाल अर्थात उस सुतल लोक के क्या बन गए, रक्षक बन गए हैं, चौकीदार बन गए हैं, उसके पालक करने वाले हैं। और कैसे हैं वो भगवान, विश्वाभिवंद्य अभिवंदितांग्री, अंग्री मतलब भगवान के चरण कमल, अभिवंदितांग्री कि भगवान के चरण कमल, विश्वाभिवंद्य अभिवंदितांग्री, अभिवंदितांग्री मतलब भगवान के चरण कमल की वंदना की जाती है किनके द्वारा, विश्वाभिवंद्य, विश्व में जो पूजनीय व्यक्ति हैं वो भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। विश्व के महापुरुष कौन है, इसे बताया है शिव जी और ब्रह्मा जी जो भगवान की उपासना करते हैं, कि हम देखते हैं भगवान का चरणामृत गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में और शिव जी के जटा में धारण करते हैं वो। तो विश्व अभिवंद्य कि जो विश्व में पूजित महापुरुषों के द्वारा भगवान के चरण कमल की उपासना की जाती है, ऐसे भगवान की कृपा न विरिंच ब्रह्मा शिव अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त हुई है, लेकिन किसको प्राप्त हो गई, हम असुरों को प्राप्त हो गई। कैसे कि भगवान स्वयं हमारे अपनी पर्सनल प्रेजेंस से हमारी रक्षा कर रहे हैं, दुर्गपाल। अब प्रभुपाद जी दो अर्थ बता रहे हैं दुर्ग का। दुर्ग का अर्थ है जो सरलते से नहीं, विच डज नॉट गो वेरी इजिली, या जो आसानी से नहीं जाता। अच्छा, कि जो आसानी से नहीं छूटता। और सामान्यतः दुर्ग अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। और दूसरा दुर्ग का अर्थ है कठिनाई, क्योंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों को सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया। तो पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने बलि महाराज को ये सुरक्षा प्रदान की, ये आश्वासन दिया कि ये जो सुतल लोक के अंदर तुम रहोगे तो तुम्हारी कैसे रक्षा होगी, कोई भी असुर या देवता जो भी तुम्हारे शत्रु होंगे यहाँ पे यदि आक्रमण करेंगे या किसी प्रकार का अटैक करेंगे तो मेरे सुदर्शन के द्वारा तुम्हारी हमेशा रक्षा होगी, उनका वध हो जाएगा, या सुरक्षा जो सुदर्शन है मेरा वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो फिजिकल प्रोटेक्शन भगवान ने दी वहां पे, और कोई भी तुम पे जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तुम रहोगे तो हमेशा विजयी होगे, कोई भी अगर कभी मान लो जीतने के लिए आए सुतल लोक तो कभी नहीं तुम जीते जा सकोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और लेकिन बलि महाराज को एक डाउट था कि अभी देखो भगवान के चरण कमल की कृपा प्राप्त हुई है, मेरी चेतना भगवान में लगी हुई है, लेकिन जो मेरे संगी साथी हैं ये सब क्या है, ये तो असुर है सब, तो मेरी चेतना दोबारा दिग्भ्रमित ना हो जाए, कहीं मैं उस संगत से जो है भगवान भगवत चेतना को भूल ना जाऊं। वो केयरफुल थे कि मैं अब नॉन ड्यूटी से संग ना करूं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी महादेव प्रताप रुद्र से नहीं मिलते इसी बहाने पे कि एक सन्यासी को भक्त को क्या करना चाहिए, अब भक्तों के संग से दूर रहना चाहिए, असत संग त्याग वैष्णव आचार। तो बलि महाराज के इस फियर को हटाने के लिए वामन देव ये उपदेश देते हैं कि मेरी कृपा से क्या होगा, उनकी संगत में रहते हुए भी तुम जो है कभी भी मेरे को नहीं भूलेंगे, अर्थात इस प्रकार से। तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी दिया उनको, तो फिजिकल प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, और स्वयं वहाँ खड़े रह करके। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि ऐसी कृपा तो किसी को प्राप्त नहीं हुई, ऐसा नहीं कि कैलाश पे भगवान शिव भगवान जो हैं पहरेदार बन के खड़े हो गए, या सत्यलोक में ब्रह्मा जी के वहाँ पे पहरेदार बन के खड़े हैं और कॉन्स्टेंट दर्शन हो रहा है बलि महाराज को भगवान वामन देव का। और चिता मित्र प्रभु ने भी कुछ कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से अलग अलग गेट से निकलते थे, लक्ष्मी आकर के जो है ब्रह्मा बलि महाराज से कहती हैं कि एक ही गेट से निकला करो, ताकि नहीं तो भगवान को अलग अलग गेट पे जाके खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे ही ये वामन देव का कई अन्य जगह पे भी डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। तो एक बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है रूप गोस्वामी द्वारा कृत लघु भागवतामृत बुक के अंदर। उसके अंदर बताते हैं रूप गोस्वामी कि भगवान के जो ये 15वें अध्याय हैं, 15वें अवतार हैं वामन देव, ये जो है बलि महाराज के यज्ञशाला में गए भीख मांगने दान मांगने के लिए। तो बता रहे हैं रूप गोस्वामी और खुलासा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में वामन देव 3 बारी अवतरित हुए थे, ये शायद किसी ने बताया नहीं होगा 3 बारी। तो पहला बार 3ों बारी दान मांगा था उन्होंने, जो है ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं 3ों बारी दान मांगने के लिए वामन देव जो है। तो पहला तो वो हुए थे सबसे पहले तो असुर राज एक थे जो उस समय बलि नहीं थे, उनका नाम था बासकली। तो बासकली के यज्ञशाला में गए भगवान, और ऐसे फिर वैवस्वत मनवंतर में भगवान जो है सबसे पहले, फिर दूसरी बारी जब गए वो एक और राजा यज्ञ कर रहा था उसका नाम था धुंधु। तो वहाँ पे जय राधिकरण भगवान की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौणिता कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो उसके यज्ञशाला में ही भगवान गए, और फिर और इस मनवंतर के जो 7वें चतुर्युगी के अंदर भगवान ने फिर अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया, और फिर बलि महाराज से दान मांगने गए। और ये घटना वामन पुराण के अंदर भी की जाती है, धुंधोर यज्ञ वरारोहे भगवान मधुसूदन देहम वामनकम कृत्वा गत्वात् याच त्रिपिष्टपम। तो जो है इस प्रकार से कि कैसे धुंधु महाराज के उसमें भी गए, और वही इंद्र का राज्य धुंधु ने ले लिया था, तो उसको फिर से दान मांगने गए कि इंद्र का जो स्वर्ग है वो दे दीजिए। लेकिन ये जो इन 3ों बार में वामन देव आए, ये सबसे प्रसिद्ध वामन देव बलि महाराज के प्रसंग वाले हैं, और बलि महाराज भी फेमस हैं, उतने फेमस बासकली भी नहीं है, धुंधु भी नहीं है, शायद उन्होंने इतना आत्मसमर्पण नहीं किया होगा, या प्रहलाद महाराज के पौत्र होने का सौभाग्य नहीं था दोनों को, जो भी कारण है। और तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज का ये वामन देव का वर्णन आता है। इसके अलावा वो रूप गोस्वामी जो हैं वो वहाँ पे और भी कई सारे रेफरेंस दे रहे हैं श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ से वामन देव के बारे में। तो वैसे तो मैंने बृहद भागवतामृत ग्रंथ पढ़ा नहीं है, भक्तों से सुना है। तो उसमें एक जो पहला पार्ट है वो श्री नारद मुनि के बारे में है कि नारद मुनि किस प्रकार से धरती से स्वर्ग, स्वर्ग से वैकुंठ और अन्य, फिर वैकुंठ से गोलों के तरह जाते हैं एक तलाश के अंदर। क्या सर्च है उनकी खोज है कि सबसे महान भक्त की खोज कर रहे हैं वो। तो पृथ्वी पे एक बड़ा महान राजा होता है जो प्रयाग में यज्ञ कर रहा होता है और बड़े लंबे समय तक दान दे रहा होता है। तो नारद जाते हैं कि आप महान भक्त हैं, तो बोले अरे वो बड़ा शर्मिंदा होता है राजा, और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं तो इतना महान नहीं, इंद्र बहुत महान है, इंद्र भगवान के महान भक्त हैं। क्यों महान भक्त हैं? क्योंकि भगवान उनके छोटे भाई के रूप में पैदा आए, उपेंद्र इसीलिए भगवान का नाम है, क्योंकि अदिति माता और कश्यप के सबसे छोटे पुत्र के रूप में भगवान वामन प्रकट हुए थे, तो इसलिए एक उनका नाम क्या है, उपेंद्र, उप इंद्र है ना, उप अर्थात जो इंद्र से छोटे, और इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान जो है स्वर्ग में विराजित हैं, और इंद्र को सौभाग्य प्राप्त है कि अपने छोटे भाई का जो है ध्यान रखने के लिए, जैसे किसी का छोटा भाई होता है तो स्वाभाविक उसके पीछे उसके ऊपर एक वात्सल्य रहता है, थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन रहता है, तो ऐसे ही इंद्र जो है अपने भाई वामन देव की जो है सेवा कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसे तो नारद मुनि बोलते हैं अच्छा चलो इंद्र अगर महान भक्त है तो उनके दर्शन करने जाते हैं। तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं कहाँ, स्वर्गलोक, और वहां का दृश्य देखते हैं। वहां देखते हैं कि भगवान वामन देव बैठे हुए हैं, चारों तरफ सब देवता हैं और चंदन के पल्प से और दिव्य आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं और बहुत सुंदर उनकी पुष्प माला है, और गरुड़ जी के आसन के ऊपर बैठे हुए हैं एक आसन के ऊपर, और लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। बृहस्पति अन्य जो ऋषिगण हैं वामन देव की की सराहना कर रहे हैं, माता अदिति उनका देख रेख कर रही हैं, और भगवान भी उनसे बड़े प्रेम पूर्वक जो हैं स्नेह से आदान प्रदान बातचीत कर रहे हैं, और सब सिद्ध विद्याधर गंधर्व अप्सरा जो हैं उनका गुणगान कर रही है और बोल रही हैं जय हो उनके लिए जो है नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं इस प्रकार से। और जो भगवान की भार्या हैं वामन देव की, उनका नाम है कीर्ति देवी, तो वो भगवान को एक पीटल नट पान सुपारी और पान जो है भगवान को दे रही हैं, और भगवान उसे उसका चबा रहे हैं। और इंद्र जो हैं शक्रम, जो इंद्र हैं वो बारम्बार भगवान की जो है उपासना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कैसे भगवान ने बार बार इंद्र की मदद की है। तो ऐसे और इंद्र के आप जानते हैं कितने आंख हैं, हाँ सहस्त्र, 1000 आंख हैं उनके शरीर के ऊपर, पूरा जो वैश्विकता में देखा जाए तो शरीर उनका आंख से ही बना है। मुझे घटना तो याद नहीं कि इसलिए श्राप मिला था उन्हें 1000 आंख के लिए, तो जो है तो वो 1000 आंखों से भगवान का गुणगान करते हुए, 1000 ही आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है उनके, जो है वो इतने आभारी प्रकट आभार हैं, आभारी हैं भगवान के। और फिर जो है भगवान जो है अपने उस राज्यसभा में ऐसे बैठे थे, और नारद ने देखा कि भगवान थोड़े समय बाद उठ करके राज्यसभा से अपने महल की ओर अपने आवास स्थान की ओर चले गए, थोड़ी दूर इंद्र ने उनके साथ गए फिर वापस आ गए सभा भवन के अंदर, और वहां फिर नारद मुनि से वार्तालाप करते हैं। तो नारद मुनि बड़ा गुणगान करते हैं कि देखो भगवान आपके भाई के रूप में आए हैं और जो है आपकी हमेशा बड़ा आदर से स्वीकार आदर से जो है आपका आपके साथ डीलिंग करते हैं, तो आप कितने महान हैं, कितने महान भक्त हैं। तो इंद्र को भी थोड़ी शर्मिंदगी होती है, वो कहते हैं कि नारद मुनि लग रहा है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लगता है, क्यों आपको मालूम नहीं है कि हम स्वर्ग के जो देवता गण हैं हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा हमको चिंता रहती है कि कब दैत्य लोग आक्रमण कर दे, कितनी बार हमको स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा है। तो जो है और तो एक बार ऐसा ही हुआ कि बलि महाराज ने इंद्र का पूरा शासन, तो इंद्र बता रहे हैं कि कैसे मेरा पद बलि महाराज ने हड़प लिया था जो है, और पूरी की पूरी जो शासन है इस ब्रह्मांड का बदल दिया था, अपने ही उन्होंने जो असुर थे उनको अपॉइंट कर दिया, किसी को सूर्य चंद्र इत्यादि वरुण इत्यादि सब जो है अपना कैबिनेट बना दिया था बलि महाराज ने। तो बोल रहे हो और जब लोग मेरे लिए यज्ञ करते थे तो सारा जो क्या बोलते हैं यज्ञ का भाग होता है आहुति होती है वो स्वयं स्वीकार कर लेते थे, तो हमारी ऐसी दुर्दशा हुई थी है ना। तो फिर जो है तो मेरे माता और पिता ने कश्यप और अदिति ने बहुत लंबे समय तक भगवान की अच्युत की उपासना की, और फिर भगवान जो है मेरे भाई के रूप में प्रकट हुए अर्थात मेरे माता पिता के पुत्र के रूप में, और उसके बाद में भगवान ने क्या किया, मेरे शत्रुओं को मारने की बजाय क्या किया, उनके साथ उनसे दान मांग के लेके आ गए, मेरा राज्य उनसे भीख मांग के छल से मांग करके ले आए, तो मुझे तो ये मेरा गुणगान नहीं मेरा अपमान लग रहा है कि नहीं, कि मेरा छीना राज्य मेरा छोटा भाई लड़के लेके आता तो अच्छा होता था। तो भगवान हमारा ऐसे जो है हम अब भगवान की लीला अपरंपार है, तो बोल रहे हैं क्यों, तो एंड देन इवन देन इंस्टेड ऑफ किलिंग दोज एनिमीज ही ओनली एम्बैरेस्ड मी रिटर्निंग माय किंगडम आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम बलि विद अ डिसेप्टिव रिक्वेस्ट फॉर चैरिटी, कि ऐसा दहन दे करके जो है भगवान ने वापिस लेकर के आ गए। और फिर इंद्र कहते हैं कि देखो हम जो स्वर्ग के लोग हैं ये बड़े ईर्ष्या द्वेष रहता है उनके अंदर, तो ऐसा बार बार ही हमको पाप वगैरह लगते रहता है। तो वो एक वहां पे घटना होती है इंद्र के पास वामन देव इस प्रकार से रहते हैं और इंद्र बोलते हैं, तो इंद्र बाद में बोलते हैं कि आप तो ऐसे अपना दुर्भाग्य और अपने अपने बोले मैं कैसे घमंडी हो गया था जो है गोवर्धन पर्वत भगवान को उठाया, फिर अभी 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 कुछ समय पहले ही भगवान यही वामन देव आए थे और मेरे को मजा चखाने के लिए पारिजात वृक्ष लेके गए थे, अभी कृष्ण के रूप में लीला किए थे अभी अभी, तो सत्यभामा के साथ आए थे। तो इंद्र बोलता है कि मैं तो महान भक्त नहीं हूँ, जो है बार बार ही माया में पड़ जाता हूँ, तो आप जो है ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी महान भक्त हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये शब्द आए हैं विरिंची। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी नारद मुनि उनका गुणगान करते हैं कि आप देखिए कितने महान हैं और भगवान हमेशा जो है महापुरुष के रूप में ब्रह्मलोक में रहते हैं और आप जो यज्ञ करते हैं भगवान स्वयं आहुति स्वीकार करते हैं और आपने इतना तपस्या किया भगवान को आप नहीं प्राप्त कर पाए लेकिन फिर भगवान आपके हृदय में प्रकट हो गए, तो आप भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी ग्लानि हुई सुन करके, तो अपने पुत्र को डांटा उन्होंने, तो बोले अरे अहम न भगवान कृष्ण इति त्वं किं प्रमाणतः युक्तिश्च मया भीक्षणं बोधितोऽसि न बाल्यतः, बोले ये तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कि तुमको याद नहीं मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, पहले मैंने तुमको भागवत सिखाया था और तुम अभी जो है उल्टा सीधा बोल रहे हो, मेरे को बता रहे ऐसे बोल रहे कि देखो हम सब तो बिबिल्डर हो जाते हैं, अभी थोड़े समय पहले मैं ही भगवान को एक बालक के रूप में देखे बिबिल्डर हो गया था, कौन सी लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, और वृंदावन का ऐश्वर्य नहीं समझ पाया था। तो ऐसे ऐसे करके और फिर द्वारका की लीला याद करते हैं कैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा सब बताते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा तो ऐसा कोई महान भक्त नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि जो महादेव हैं शिव जी हैं शर्वह वो महान भक्त हैं, उनके पास जाओ। तो ब्रह्मा जी तो नारद मुनि जाते हैं शिव जी के पास और शिव जी का गुणगान करते हैं और जो है तो शिव जी होती है माता पार्वती होती है दोनों का गुणगान करते हैं, शिव जी का शर्म भी झुक जाता है, बोले अरे तुम जो हो, फिर उनको भी शिव जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा भगवान के सेवकों का अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तो जो है और फिर वो अपना जो कुछ कुछ लीला है वो बताते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो हाँ शिव जी कुछ कुछ बताते हैं कि भगवान कितने महान हैं और हम कैसे महान नहीं हैं, फिर वो कहते हैं कि देखो भगवान के महान भक्त कौन हैं, प्रह्लाद महाराज, अब उनके पास जाओ, प्रह्लाद जो है मैंने स्वयं मैं भी था वहाँ पे, ब्रह्मा भी थे लक्ष्मी भी थी जब नरसिंह भगवान के रूप प्रकट हुए थे और हमने जो ब्रह्मा ये इस छोटे बालक प्रह्लाद को कृपा प्राप्त हुई थी हमने साक्षात देखी थी, हमसे किसे शांत नहीं हुए थे भगवान लेकिन प्रह्लाद को क्या अनुग्रह प्राप्त हुआ भगवान का, तो तुम उनके पास जाओ वो भगवान के महान भक्त हैं। अब नारद मुनि तो प्रह्लाद के गुरु ही हैं, गर्भ मुनि को सिखाया था लेकिन नारद मुनि जाते हैं और प्रह्लाद महाराज के गुणगान करते हुए शिव जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते कि देखो ये बलि ये तुम जानते हो कि बलि जो है उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करके सदाचार का पालन नहीं किया और फिर भी हम जानते हैं कि बलि महाराज के द्वारपाल बन गए भगवान, ये जानते हो क्या, ये बलि महाराज के तुच्छ दान देने के कारण भगवान ने इतना बड़ा अनुग्रह किया है कि उसने क्या तीन लोगों का साम्राज्य दे दिया अपना शरीर दे दिया, तो क्या इसलिए भगवान द्वारपाल बन गए, उसके इसलिए नहीं बने, भगवान द्वारपाल इसलिए बने हैं क्योंकि ये सब जो है प्रह्लाद महाराज की कृपा के कारण संभव हुआ है, क्योंकि प्रह्लाद भगवान बहुत अनुग्रह किए हैं इसीलिए जो है बलि महाराज के द्वारपाल बन गए हैं। और इसका प्रूफ क्या है, ऐसा नहीं मेरा मेंटल स्पेकुलेशन है, देखो मेरा ही भक्त था बाणासुर, ये बलि महाराज का पुत्र है, ये मैंने अभी मेरे को कभी पहले नोट नहीं किया था, मैंने आज ही सुबह कृष्णा बुक में भी चेक किया दोबारा, ये जो बाणासुर था वो तो शिवजी बोल रहे हैं देखो अब इनके पूरे परिवार तो चाहे प्रह्लाद थे चाहे विरोचन हुए और चाहे बलि महाराज सब विष्णु के उपासक थे लेकिन ये बाणासुर असुर था, सही में असुर था, तो और बलि महाराज का पुत्र था, इसने विष्णु की उपासना त्याग करके शिवजी की उपासना कर, शिवजी बोल रहे हैं देखो मेरा भक्त था ये बाणासुर और इसने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया था, है कि नहीं? और फिर मैं भी जब बाणासुर युद्ध करने गया तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे गया था लड़ने के लिए, और मेरा भर भगवान में युद्ध हुआ था। और फिर नारायण ज्वर शिव ज्वर की कथा आपको मालूम होगी किस प्रकार से। और भगवान ने क्या किया, बाणासुर का वध नहीं किया, उसके 1000 हाथ थे, उसमें से जो कितनी भुजाएं काट दी सुदर्शन से, 996 भुजाएं काट दी भगवान, 996 कृष्ण बुक से, तो 4 भुजाएं छोड़ दी उससे कि बाणासुर की जो है। तो और ये किस लिए किया भगवान ने, प्रहलाद पर कृपा दिखाने के लिए, क्योंकि प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा मैं। तो ऐसे बाणासुर का जो है वध नहीं किया, लेकिन उसकी अकल ठिकाने आ गई भगवान के द्वारा, उसका अहंकार जब तोड़ दिया गया। तो ऐसे शिव जी बोलते हैं तुम कहाँ जाओ, प्रहलाद के पास जाओ। तो फिर भगवान नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद महाराज को कि देखो तुमने जो है भगवान को जीत लिया है। हम रोज गाते भी प्रहलाद अहलाद दाई ने, कि भगवान जो है क्यों प्रकट हुए थे, प्रहलाद को आनंद देने के लिए। तो बोलते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि देखो तुमने भगवान को जीत लिया, और मैं खाली इतना ही क्यों कहूँ कि तुमने जीत लिया है, तुम्हारे पौत्र बलि महाराज नहीं भगवान को जीत लिया है कि नहीं, तो तुम्हारी कृपा से उनके द्वारपाल बन गए हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज को भी बड़ा झिझक होती है, बोले ऐसा मैं महान भक्त नहीं कुछ जो है। वो बोलते हैं कि मैं तो आप ही का शिष्य हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जो है, और आप ही जो कुछ भी आप ही कृपा से है। लेकिन जो है फिर प्रहलाद महाराज 2 अलग तथ्य बताते हैं इनको नारद मुनि को। वो कहते हैं कि देखो मैंने सुना है, नहीं नारद मुनि कहते हैं कि बलि महाराज के बंदी हुए, इसके तात्पर्य में एक लीला बताया है कि, और यही श्लोक कोट किया है, नैमम विरिंचो लभते प्रसादम, कि जो है किसी अन्य के द्वारा भगवान बलि महाराज द्वारा पूर्णतः कैप्टिव हो चुके थे, अर्थात उनके आज्ञा पालक बन चुके थे भगवान, और यहाँ लिखा है क्या दुर्ग पालो। तो फिर एक बारी क्या हो गया, ये स्कंद पुराण में कथा रूप गोस्वामी यहाँ कोट कर रहे हैं, उसने बताया है कि एक बारी जब द्वारिका धाम पे 10 राक्षसों ने आक्रमण किया एक बारी, और वहाँ पे तो जब आक्रमण किया तो वहाँ के जो नागरिक थे वो सब दुर्वासा मुनि उनको लेकर के गए कहाँ पर, वो बड़े अब दुखी हो गए कि दैत्यों ने आक्रमण किया है। तो नारद मुनि ने उनको एडवाइस किया कि आप जाओ कहाँ पे, सुतल लोक में जाओ और बलि महाराज वामन देव से जो है मदद मांगो, तो वो आपकी रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं और वामन देव से प्रार्थना करते हैं, तो वामन देव 2 सुंदर श्लोक बोलते हैं, पराधीनोस्मि विप्रेन्द्र भक्ति कृतोस्मि नान्यथा बलेर बलेर आदेशकारी च दैत्येन्द्र वश गो हि अहम् तस्मात् प्रार्थय विप्रेन्द्र दैत्यं वैरोचनं बलिं अस्य देशात् करिष्यामि यद् अभिष्टं तवाधुना। वो बोल रहे हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ मैं तो पराधीन हूँ, है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो मैं तो पराधीन हूँ, और बलि की शुद्ध भक्ति के द्वारा मैं खरीदा जा चुका हूँ, इसीलिए मैं उनका क्या हूँ, आदेशकारी पालक, आदेश पालक हूँ, और राजा बलि के द्वारा मैं पूर्णतया नियंत्रित हूँ, इसीलिए यदि तुम चाहते हो तो विरोचन पुत्र बलि से मांग लो तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊँगा। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं बलि महाराज के पास और बोलते हैं कि भाई हमको संकट आ गया है द्वारका में, थोड़ा वामन देव को भेज दो रक्षा करने के लिए। तो बलि महाराज बोलते हैं ऐसा तो असंभव है, मैं तो नहीं भेज सकता, अगर वामन देव चले जाएंगे तो मैं कैसे उनका दर्शन करूंगा, है ना। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं यहाँ पे मृत्यु तक अनशन कर दूंगा अगर तुम वामन देव को नहीं छोड़ोगे, नहीं जाने दोगे। तो बलि बोलते हैं यदि भाव्यम तद भवतु ते यद जानासि तथा कुरु ब्रह्म रुद्रादि नमितम नाहम त्यक्षे पदद्वयम्। बोल रहे जो तुमको बस में आता है कर लो, मृत्यु का अनशन देना है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाना है, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, यथा जानासि तथा करो, लेकिन मैं तो भगवान के वो 2 चरण कमल यू नो अभी विश्वाभिवंदेर अभिवंदितांग्री अंग्री, ये जो 2 चरण कमल है भगवान के, ये नहीं छोड़ सकता मैं तो। और ये कैसे हैं जिस पे ब्रह्मा शिव और अन्य देवी देवता भी जो हैं उपासना करते हैं, तो इन भगवान को कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मृत्यु तक उपवास करना है, करते रहो जो करना है। तो ये प्रहलाद महाराज ये वहां बता रहे हैं कि नारद मुनि जब कह रहे हैं कि बलि महातारा किस प्रकार वामन देव पूर्णतया परचेज्ड हैं, और फिर प्रहलाद महाराज के पास जब ये नारद मुनि का मत था तो नारद मुनि कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं नारद मुनि को एक और तथ्य बताते हैं उनका रियलाइजेशन। वो कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों से सुना है, कुछ प्रामाणिक स्रोतों से सुना है कि जानते हो वामन देव क्यों सुतल लोक में गए हैं? वो सुतल लोक में इसलिए गए, वैसे ही बलि को बंदी बना दिया था उन्होंने, तो सुतल लोक में भी ऐसा नहीं कि बलि राजा है, बलि को भगवान ने कैद करके रखा है वहां पे, ऐसा बता रहे वामन देव ने जो है बलि को कैद करके रखा है। मैं उल्टा सुने तो प्रहलाद महाराज थोड़ा अलग बता रहे हैं अपनी नम्रता के कारण और कह रहे हैं कि मैं भी सुतल लोक जाता हूँ वहीं कई बार, मेरे को तो भगवान दिखते नहीं, मैं कई बार ऐसे नहीं बोलते हैं लोग गेट पे खड़े हैं लेकिन सबको नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा ऐसा कैसे? कदाचित कदाचित कार्य गत्तैव दृश्यते रावणादिवत दुर्वास शिक्षितो अत्रैव विश्वातस्य दर्शने। तो बोले कभी कभी भगवान दिखाते हैं रक्षा करने के लिए, रावण आया था तो भगवान वामन ने लात मार के भगा दिया उसको, तो तब एक बार दिखाया। इसको ये नहीं प्रूव हो सकता कि भगवान हमेशा वहां रहते हैं, ऐसे प्रहलाद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाता हूं मुझे दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा प्रहलाद महाराज को मतलब अपनी नम्रता से कह रहे हैं। क्यों? अगले सेंटेंस में कहते हैं दुर्वासा शिक्षितो अत्रैव, कह रहे कि दुर्वासा मुनि जो हैं उनको भगवान पर महान विश्वास था इसीलिए जब वो गए तो भगवान उनको दर्शन दिए, मैं जाता हूँ मेरे को तो विश्वास नहीं है इसीलिए मुझे भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। और फिर कहते हैं जब किसी की इंटेंस डिजायर होती है भगवान दर्शन प्राप्त करने के लिए तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो मेरी तो ऐसी इच्छा है नहीं, है कि नहीं? तो और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए मुझे नैमिषारण्य में जाके दर्शन करना पड़ता है, अगर भगवान सुतल लोक में रहते तो थोड़ी ना मैं नैमिषारण्य जा दर्शन करने के लिए। तो प्रहलाद नम्रता से ऐसे बताते हैं उन्हें जो है कि वामन देव जो है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ। और प्रहलाद फिर किसका गुणगान करेंगे, किसके पास भेजेंगे नारद मुनि को, कह रही मुझे तो कभी कभी दर्शन हुआ है सुतल लोक में, नरसिंह देव के रूप में जब प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को मारा थोड़ी सी देर प्रार्थना की भगवान अदृश्य हो गए बस, उसके बाद दोबारा दर्शन नहीं हुआ, है कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति है, एक महान भक्त है जिसको भगवान का, वो तो इटर्निटी से भगवान की सेवा कर रहा है, कौन? हनुमान जी। तो बोलते तुम हनुमान के पास जाओ, तो फिर नारद मुनि किम पुरुष लोक में जाएंगे हनुमान के पास, और ऐसे लीला आगे बढ़ेगी। हनुमान जी फिर मुझे याद है उद्धव जी के पास भेजेंगे शायद, और तो ऐसे लीला आगे बढ़ते फिर ऐसे करते नारद मुनि जो है गोपियों के पास पहुंचेंगे। तो ये कुछ रेफरेंस है लघु भागवतामृत और बृहद भागवतामृत के अंदर जहाँ पे बलि महाराज और वामन देव का प्रसंग आता है। ये लीला में एक महान बात है जो जैसे आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से सब प्रसन्न हो जाएंगे, शुक्राचार्य सभी देवता इंद्र प्रहलाद महाराज बलि महाराज इत्यादि। तो भगवान का जो अरेंजमेंट है वो कभी भी जो है गलत नहीं होता, और बड़े बड़े लोगों को भी समझ नहीं आता है ना। मुयंति यत सूरयः, कि बड़े बड़े जो देवतागण हैं ऋषिगण हैं वो सब भी इसको लेके बिविल्डर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि ऐसे विश्वाभिवंदेर अभिवंदितांग्री, कि ऐसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनके चरण कमलों की उपासना करें। तो अभी 7-8 मिनट हैं, इसीलिए ऐसा एक भजन है जो भगवान के चरण कमलों को ग्लोरीफाई करता है, तो मैंने सोचा वो भजन गाते हैं। आपने शायद ज़्यादा सुना भी नहीं होगा इस भजन को, ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है ये भजन, एको न भुजिन प्रभु तुमार चरण। आप पीछे दे सकते हैं आधे तो ये ठाकुर भक्ति ने शरणागति में लिखा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण सेक्शन के अंदर, कि भगवान के जो दो चरण कमल हैं अखो न भुजिनु प्रभु तुमार चरण अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वकरण, कि भगवान के ऐसे जो चरण कमल हैं ये शोक से भय से और मृत्यु से वो करने वाले हैं, छुटकारा दिलाने वाले हैं। सकल छाड़िया तुवा चरण कमले पड़ी आछी आमिना तब पद तले, उन भगवान के पद तलों पे मैं अपने आप को शरणागत करता हूँ और जो मेरे पास सब कुछ है उन सबको आमी तब नित्य तब पाद पद्मनाथ रखी बे हमारे आर राखो करता नहीं ए भव संसारे। हे नाथ इस संसार के मृत्यु जन्म और मृत्यु के चक्र से मेरा अन्य कोई प्रोटेक्शन जो है रक्षा करने वाला आप ही रक्षक हैं एकमात्र और कोई नहीं है। आमी तब नित्यदा जानी नु ए बा हमारा पालन भार एखन तो मार, कि मैं जन्म जो है अपने नित्य दास के रूप में आपको अब जान पाया हूँ और मेरी जो मेंटेनेंस है पालन है वो भार आपका है और बड़ा दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है आपसे स्वतंत्र होके मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ है दुख दूर गेलो ओ पद वरण है और अब आपके चरण कमलों का वरण करने मेरे दुख दूर हुए हैं। जे पद लागिया रमा तपस्या करिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला कि जिन चरणों को प्राप्त करें लक्ष्मी ने तपस्या किया और जिन चरणों को प्राप्त करके शिवजी अपने शिवत्व अर्थात ऑस्पिशियसनेस की क्वालिटी को प्राप्त कर पाए। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला जे पद नारद मुनि हृदय धरिला कि इन चरण कमलों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए और नारद मुनि इन चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। सही से अभय पद शिरे ते धरिया परम आनंद नाची पद गुण गाइया उन अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ और परम आनंद से जो है गुणगान करता हूँ और नृत्य करता हूँ। संसार विपद हो ते अवश्य उद्धार भक्ति विनोद उपद करीबे तुम्हार। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है कह रहे हैं कि आपके चरण कमल भक्ति विनोद को इस संसार की यात्रा से छुटकारा प्राप्त करेंगे।
एको न भोजिनो प्राभो तोमार चरण अशोक भयामृता पूर्ण सर्वखाण सकल छाड़िया तुवा चरण कमाले पड़िया छे आमिनाथ तव पदता तव पाद पद्मनाथ रखिबे अमारे आर राखो करता नाही भव संसार अमितव नित्य दास जानिनु ए बार हमार पालन भार एखो न तोमार बड़ दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवन दुख दूर गे लो ओ पद वाराणे जे पद लागिया रामा तपस्या करीला जे पद पाइया शिवा शिवत्व लभिला जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला जे पद नारद मुनि से अभय पद शिरते धोरिया परम आनंद नाची पद गुण गाइया संसार विपद होते अवश्य उधार कति विनोद उपद करिवे तोमार भक्ति विनोद उपद करिवे तोमार एको न बुझिनु प्रभु तोमार चरण अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वकाना
तो जो इस श्लोक में इस भजन में वही भाव प्रकट हुआ है नेमम विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्व किमुता पर न ब्रह्मा जी शिव जी और लक्ष्मी जी तो यही वर्णन यहाँ पे हुआ है और विश्वाभिवंदेर अभिवंदितांग्री कि भगवान के वो दो चरण कमल जो कि ब्रह्मा शिव जी इत्यादि द्वारा पूजित हैं तो इन सबके चरण कमल की शरण ग्रहण हमको करनी चाहिए और उसी का श्रवण कीर्तन करना चाहिए और इसी के साथ इस भागवतम क्लास का समापन करते हैं। जय श्री रामदेव भगवान की जय। श्री बलि महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे।